ये आकाशवाणी है। अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। बारामूला से लेकर भुज तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर स्थित 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं। इनमें नागरिक और सैन्य ठिकानों के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाले संदिग्ध सशस्त्र ड्रोन शामिल हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार इन स्थानों में बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, लालगढ़ जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट और लाखीनाला शामिल हैं। फिरोजपुर में एक सशस्त्र ड्रोन ने नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाया, जिसमें एक स्थानीय परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता बनाए हुए है और ऐसे सभी हवाई खतरों को काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग करके ट्रैक और निपटाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक आवाजाही सीमित रखें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को करीब 400 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए लेह से सरक्रीक तक 36 स्थानों पर घुसपैठ करने का प्रयास किया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए कई ड्रोनों को मार गिराया। नई दिल्ली में विशेष संवाददाता सम्मेलन में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य ढांचे को लक्ष्य बनाने के इरादे से समूची पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था।
भारतीय सेना कर्नल ने कहा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी हथियारों से गोलाबारी की। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का लक्ष्य वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण और खुफिया जानकारी हासिल करना था। उन्होंने कहा कि ड्रोनों के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है और प्रारंभिक खबरों से पता चलता है कि ये तुर्की में बने असगार्ड सॉन्गर ड्रोन थे। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 मई की शाम को अकारण ड्रोन और मिसाइल हमले के दौरान अपना सिविल विमानन क्षेत्र खुला रखा। उन्होंने नागरिक विमानों का इस्तेमाल ढाल के रूप में करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र ड्रोन पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा ठिकानों पर दागे गए और इनमें से एक ड्रोन पाकिस्तान के एडी रडार को नष्ट करने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी तोपों और सशस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए गोले बरसाए, जिनसे कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए। उन्होंने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना को भी भारी क्षति पहुंचाई गई है। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि हमलों से इनकार करना पाकिस्तान की दोहरी नीति का उदाहरण है। उन्होंने गुरुद्वारों, कॉन्वेंटों और मंदिरों सहित पूजा स्थलों को निशाना बनाने और उन पर गोलाबारी करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि ये उसके लिए एक नया निम्न स्तर है। उन्होंने कहा कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का माकूल जवाब है।
The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. The attack on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident.
विदेश सचिव ने बताया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए करतारपुर साहिब गलियारे की सेवाएं अगले निर्देश तक स्थगित कर दी गई हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बोर्ड की बैठक में मतदान से परहेज किया, जिसमें पाकिस्तान के लिए एक नए बेलआउट पैकेज पर विचार किया गया। भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए ऋण वित्त पोषण निधि के दुरुपयोग की संभावना पर भी चिंता व्यक्त की। IMF ने $1 बिलियन के विस्तारित फंड सुविधा ऋण कार्यक्रम की समीक्षा की और पाकिस्तान के लिए $1.3 बिलियन के नए लचीलापन और स्थिरता सुविधा ऋण कार्यक्रम पर भी विचार किया। भारत ने बताया कि सीमा पार आतंकवाद के निरंतर प्रायोजन को पुरस्कृत करना वैश्विक समुदाय को एक खतरनाक संदेश भेजता है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान की विस्तारित निधि सुविधा ईएफएफ व्यवस्था की पहली समीक्षा को मंजूरी दे दी है, जिससे देश को लगभग $1 बिलियन तक पहुंच मिल सकेगी। आईएमएफ ने घोषणा की कि इसके अतिरिक्त बोर्ड जलवायु लचीलापन और आपदा तैयारियों का समर्थन करने के लिए लगभग $1.4 बिलियन की लागत वाली लचीलापन और स्थिरता सुविधा आरएसएफ व्यवस्था के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक की। पाकिस्तान की आक्रामकता के विरुद्ध भारत के हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब से परेशान आतंक का गढ़ पाकिस्तान अब डिजिटल क्षेत्र में गलत सूचनाएं फैलाने में जुट गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो और गलत चित्रों का उपयोग कर पाकिस्तान वैश्विक नैरेटिव विकृत करने और जनता की धारणा प्रभावित करने की निरंतर कोशिश कर रहा है। इस महत्वपूर्ण समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग न करने को कहा है। केंद्र ने सभी राज्यों से आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा प्रमुखों को आपातकालीन खरीद का अधिकार देने को कहा है। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने कल इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखा। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद से भारत के दृष्टिकोण को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है। सरकार ने 24 हवाई अड्डों को बंद रखने की अवधि 14 मई तक बढ़ा दी है। एयर इंडिया ने कहा है कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज, जामनगर और राजकोट के लिए उसकी उड़ानें 15 मई तक रद्द रहेंगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूरोपीय देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध अब और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जारी जटिल व्यापार वार्ताओं का परिणाम इसी वर्ष निकलेगा। दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह में डॉ जयशंकर ने कल कहा कि इस वर्ष फरवरी में यूरोपीय संघ के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का दौरा काफी महत्वपूर्ण था। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल मुंबई में अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि व्यापार की स्थिति सामान्य बनी रहे। उन्होंने कार्गो संचालन की सुचारू और नियमित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों की भी समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा भी की, जो मंत्रालय की प्रमुख पहलों में से एक है। अमेरिका और ईरान रविवार को ओमान में परमाणु वार्ता का एक नया दौर आयोजित करेंगे। अधिकारियों के अनुसार ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा से ठीक पहले होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजरायली सैन्य हमले को रोकने के लिए तेहरान के साथ एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद जताई है, जो एक व्यापक युद्ध को भड़का सकता है। ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने पहले ओमान और रोम में हुई पिछली वार्ता के बाद उम्मीद जताई थी। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा कल ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।